एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी बल्कि अपनी कलम से एक पूरे देश मिस्र की धड़कनों का, उसकी आत्मा का क्या कहते हैं, नक्शा सा खींच दिया। हम बात कर रहे हैं नाजिम महफूज की।
जी हाँ, नाजिम महफूज, और सोचिए अरबी भाषा में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो पहले और आज तक के इकलौते लेखक हैं। 1988 में मिला था उन्हें।
इकलौते? ये तो कमाल की बात है।
हाँ बिल्कुल, ये बात ही उनके कद को समझने के लिए काफी है। उन्हें यूं ही मतलब आधुनिक अरबी उपन्यास का पितामह नहीं कहा जाता। उन्होंने 20वीं सदी के मिस्र को उसके सारे उतार चढ़ाव, उसकी उम्मीदें, उसका दर्द अपनी रचनाओं में जैसे जिंदा कर दिया।
तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पे हम उनके जीवन, उनके विचारों की जो क्रांति थी, उनकी जो कालजयी काम हैं और उनकी स्थायी विरासत, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। ये देखना वाकई आकर्षक होगा कि कैसे एक इंसान ने एक पूरे देश की कहानी इतने मानवीय और गहरे स्तर पर कही। चलिए शुरू करते हैं, उस माहौल से शुरू करें जिसमें महफूज ने आँख खोली।
हाँ जरूर, देखिए महफूज का जन्म हुआ 1911 में। वो एक, आप कह सकती हैं, तूफानी समय था। मिस्र वैसे तो कहने को ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था पर असल में तो ब्रिटिश का नियंत्रण था और पहला विश्व युद्ध बस दरवाजे पर ही था।
अच्छा।
और उनका शहर काहिरा, वो एक अजीब सी कश्मकश में जी रहा था। एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं थी और दूसरी तरफ पश्चिम से आई थोड़ी थोपी हुई सी आधुनिकता। और ये दौर नहदा यानी अरबी पुनर्जागरण का भी था। मतलब ताहा हुसैन, अब्बास महमूद अल अक्काद जैसे बड़े लेखक आधुनिक अरबी गद्य को एक नई शक्ल दे रहे थे। फिर 1919 की क्रांति हुई।
हाँ, 1919 की क्रांति, वो तो उन्होंने बचपन में देखी थी ना।
में एक उबाल सा था।
तो इसका मतलब है कि हवा में राष्ट्रवाद, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और समाज में धर्म की क्या जगह हो, इन सब पर जोरदार बहसें चल रही होंगी। मैं सोच सकता हूँ कि काहिरा के कैफे इन विचारों के अखाड़े बन गए होंगे।
आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। वो कैफे सिर्फ कॉफी पीने की जगह नहीं थी, वो विचारों के क्या कहते अड्डे थे, बहसें होती थी। और इसी माहौल में यूरोपीय साहित्य का भी गहरा असर पड़ रहा था। बालजाक, डिकिन्स, टॉल्स्टॉय, जोला, ये यथार्थवादी लेखक, और फिर दोस्तोवस्की, कामू, सार्त्र जैसे दार्शनिक, इन सब के विचार पढ़े और समझे जा रहे थे।
अच्छा।
महफूज ने इन सब धाराओं को मतलब सोखा, जज्ब किया, लेकिन उन्हें अपनी मिट्टी यानी मिस्र के आम जीवन और काहिरा की गलियों के जरिए पेश किया। बाद में भी 1952 की क्रांति हुई जिसने राजशाही खत्म की।
हाँ।
फिर 1967 का वो 6 दिवसीय युद्ध और 1979 का कैंप डेविड समझौता, इन सब घटनाओं ने उनके लेखन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी।
उनके निजी जीवन की बात करें तो जन्म 11 दिसंबर 1911 को काहिरा के पुराने घनियाबादी वाले गमालिया इलाके में हुआ। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता सिविल सेवक थे, बाद में शायद व्यापार करने लगे, और 7 भाई-बहनों में ये सबसे छोटे थे।
जी, और कहते हैं कि गमालिया की वो तंग गलियां, वो पारंपरिक माहौल उनकी कल्पना पर हमेशा हावी रहा। भले ही बाद में उनका परिवार एक नए आधुनिक इलाके अल अब्बासिया में चला गया।
हाँ, वो पुराना काहिरा उनकी रचनाओं में बार बार लौट कर आता है, कभी याद बनकर, कभी प्रतीक बनकर।
बिल्कुल, उनके जीवन का एक शायद निर्णायक पल 1919 में आया। तब वे सिर्फ 7 साल के थे और उन्होंने अपनी खिड़की से ब्रिटिश सैनिकों को मिस्र के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाते देखा।
7 साल की उम्र में? बाप रे।
हाँ, ये मंजर उनके बाल मन पर छप गया। इसे उनकी राजनीतिक चेतना का पहला क्षण कह सकते हैं और इसकी गूंज हमें उनके कई उपन्यासों में सुनाई देती है।
वो पूरी तरह पश्चिमी ढंग की थी। उन्होंने मिस्र विश्वविद्यालय, जो अब काहिरा विश्वविद्यालय है, वहां से दर्शन शास्त्र में डिग्री ली 1934 में।
दर्शन शास्त्र में?
जी, फिलोसफी। वहां उन्होंने कांट, हेगेल, शोपेनहावर जैसे पश्चिमी दार्शनिकों को पढ़ा। तो इस पढ़ाई ने उन्हें अस्तित्व, इच्छा की स्वतंत्रता, नियति, जीवन का अर्थ, इन जैसे बड़े सवालों से जूझने का एक बौद्धिक ढांचा दिया।
तो एक तरफ पारंपरिक इस्लामी परवरिश और काहिरा की गलियों का वो अनुभव, और दूसरी तरफ पश्चिमी दर्शन का गहरा अध्ययन, ये जो विरोधाभास है, यही शायद उनके लेखन को वो अनोखी गहराई देता है जहां आस्था और तर्क, परंपरा और आधुनिकता अक्सर टकराते और संवाद करते नजर आते हैं।
निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने। महफूज का सबसे बड़ा योगदान अगर देखें तो अरबी उपन्यास को एक परिपक्व साहित्यिक विधा बनाना था। उन्होंने पश्चिम के यथार्थवाद को लिया, मतलब जीवन को जैसा है वैसा दिखाना, और उसे अरबी संस्कृति और कहानी कहने की अपनी परंपरा में ढाल दिया। अच्छा,
उन्होंने एक ऐसी शैली विकसित की जो थी तो आधुनिक पर उसकी जड़ें अरबी थीं। वे काहिरा के इतिहासकार बन गए, पर वैसे नहीं जैसे तारीखें लिखते हैं। उन्होंने शहर का एक साहित्यिक नक्शा खींचा। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है जैसे हम खुद उन गलियों में घूम रहे हैं, उन कैफे में बैठे हैं, उन घरों में झांक रहे हैं।
वाह।
उनके लेखन के केंद्र में वही मुद्दे थे जिनसे उस समय का मिस्र जूझ रहा था, परंपरा और आधुनिकता के बीच का तनाव, व्यक्ति अकेला समाज की बड़ी ताकतों से कैसे टकराता है, समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका, आस्था कैसे विकसित होती है और कैसे उस पर सवाल उठते हैं, समय कैसे सब कुछ बदल देता है, विज्ञान और विश्वास की बहस, क्रांति से मोहभंग, और इन सब के बीच जीवन का अर्थ क्या है।
आपने पहले उनके काम के संदर्भ में इस्लामी अस्तित्ववाद शब्द का इस्तेमाल किया था, ये सुनने में थोड़ा मतलब विरोधाभासी सा लगता है, क्या आप इसे थोड़ा और समझाएंगी?
हाँ, ये वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प और अहम अवधारणा है उनके काम को समझने के लिए। देखिए, अस्तित्ववाद जो है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, वो मूल रूप से जीवन के अर्थ, स्वतंत्रता, मृत्यु के भय जैसे सवालों से जुड़ा पश्चिमी दर्शन है।
जी।
महफूज इन सवालों से गहराई से जूझते हैं, लेकिन वे अपने किरदारों को पश्चिमी अस्तित्ववादियों की तरह एक शून्य या निरर्थक ब्रह्मांड में अकेला नहीं छोड़ते। उनके किरदार इन्हीं सवालों के जवाब अपनी इस्लामी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के भीतर खोजने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, मतलब अपनी जड़ों में रहकर।
बिल्कुल। तो इस्लामी अस्तित्ववाद एक तरह से उन सार्वभौमिक अस्तित्ववादी प्रश्नों को इस्लामी संदर्भ में देखने और समझने का प्रयास है। उनके किरदार आधुनिक दुनिया के उलझनों में अर्थ ढूंढते हैं, पर उनकी जड़ें अपनी संस्कृति में होती हैं।
समझ गया।
और अपनी बात कहने के लिए उन्होंने कई साहित्यिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे काहिरा ट्रिलॉजी में कई पीढ़ियों की कहानी कहना, समाज का बहुत बारीक विश्लेषण करना, किरदारों के मन की गहराइयों में उतरना, जिसे मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद कहते हैं।
हाँ।
फिर वो चेतना प्रवाह तकनीक, यानी किरदार के मन में जैसे विचार आते हैं, टूटे फूटे, उलझे हुए, वैसे ही उन्हें लिखना। इसका प्रयोग उन्होंने चोर और कुत्ते जैसे उपन्यासों में किया, और गेबलावी के बच्चे जैसे कामों में प्रतीकात्मक रूपक का इस्तेमाल किया, मतलब एक कहानी जिसके पीछे गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छुपा हो।
अच्छा, रूपक यानी एलेगोरी।
जी, एलेगोरी। और उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद ये थी कि वे कट्टर धार्मिकता और गहरे संदेह दोनों को बड़ी सहानुभूति और समझ के साथ चित्रित कर सकती थीं, बिना किसी का पक्ष लिए या फैसला सुनाए।
ये तो कमाल की बात है। अच्छा, उनके लंबे साहित्यिक जीवन को समझने के लिए विद्वान अक्सर उसे कुछ चरणों में बांटते हैं। पहला है ऐतिहासिक चरण। अपने शुरुआती दौर में उन्होंने प्राचीन मिस्र के इतिहास से प्रेरणा लेके उपन्यास लिखे।
हाँ, बिल्कुल, शुरू में।
जैसे खुफू का ज्ञान 1939, नूबिया की रेडोपिस 1943, थीब्स युद्ध में 1944। ऐसा लगता है जैसे वे मिस्र की जड़ों को टटोल रहे थे, शक्ति, आध्यात्मिकता, राष्ट्रीय पहचान जैसे मुद्दों को इतिहास के आईने में देख रहे थे।
जी, वो अपनी पहचान खोज रहे थे शायद।
हाँ, फिर आया उनका सबसे मशहूर दौर, यथार्थवादी चरण। 1940 के दशक के अंत से वे अपने समकालीन मिस्र पर फोकस करने लगे। मिदाक्कली 1947 इसका एक अद्भुत उदाहरण है।
हाँ, मिदाक्कली बहुत मशहूर।
ये काहिरा की एक छोटी सी गली के अलग अलग बाशिंदों की कहानियों के जरिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद के मिस्र के समाज का जीता जागता चित्र पेश करता है। और इस दौर का शिखर था उनका महाकाव्यात्मक उपन्यास काहिरा ट्रिलोजी 1956-57।
काहिरा ट्रिलोजी, हाँ।
इसमें तीन उपन्यास शामिल हैं, पैलेस वॉक, पैलेस ऑफ डिजायर और शुगर स्ट्रीट। ये अल जवाद परिवार की तीन पीढ़ियों की कहानी है, 1917 से 1944 तक। और इसके माध्यम से महफूज ने मिस्र के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों का एक विशाल कैनवस चित्रित किया है।
जी, इसी ट्रिलॉजी के बाद उन्हें मध्य पूर्व का बाल्जाक कहा जाने लगा।
हाँ, बाल्जाक की तरह।
काहिरा ट्रिलोजी को निस्संदेह विश्व साहित्य की महानतम रचनाओं में गिना जाता है। इसमें अरबी उपन्यास को एक नई ऊंचाई दी, लेकिन इसके बाद जैसा अक्सर महान लेखकों के साथ होता है, महफूज के लेखन में एक अहम मोड़ आया।
हाँ, जिसे प्रयोगात्मक रूपक चरण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1952 की जो नासिर क्रांति थी, जिससे शुरुआत में बहुत उम्मीदें थी, उससे हुए मोहभंग ने उन्हें लिखने की नई दिशाओं की ओर मोड़ा।
हाँ, मोहभंग, डिसिल्यूजनमेंट।
उनका लेखन अब ज्यादा आधुनिकतावादी, ज्यादा प्रतीकात्मक और रूपक यानी एलेगरी आधारित हो गया। गिबलावी के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गिबलावी, 1959 इसी दौर की सबसे विवादास्पद रचना है शायद।
हाँ बिल्कुल, सबसे विवादास्पद। ये एक बहुत जटिल धार्मिक रूपक है जिसमें आदम, मूसा, ईसा और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की कहानियों को काहिरा की एक गली के संघर्ष के माध्यम से एक नए आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।
ओहो।
इस उपन्यास ने मिस्र और अरब जगत में जैसे भूचाल ला दिया। कट्टरबंती धार्मिक हलकों ने इसे ईशनिंदा करार दिया। नतीजा ये हुआ कि मिस्र में इसे किताब के रूप में छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
प्रतिबंध?
जी, बैन, जो उनके मृत्यु के बाद ही हटाया जा सका। हालांकि ये एक अखबार में धारावाहिक के रूप में छपा था, पर इस विवाद ने महफूज को ताउमर घेरे रखा और उन्हें धमकियां भी मिली। इसी प्रयोगात्मक दौर के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं चोर और कुत्ते, 1961। इसमें उन्होंने क्रांति के बाद पनपे अलगाव और विश्वासघात जैसे विषयों को दिखाने के लिए वो चेतना प्रवाह तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर शरद ऋतु बटेर, 1962, खोज, 1964, भिखारी, 1965, नील नदी पर बहते हुए, 1966, ये रचनाएं भी इसी दौर की है जो अस्तित्ववादी सवालों और सांस्कृतिक उलझनों को और गहराई से टटोलती हैं।
और फिर उनका बाद का दौर आता है। इसमें उनकी रचनाएं अक्सर छोटी, ज्यादा सघन और प्रतीकात्मक हो जाती हैं। हराफिश, 1977, एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो एक परिवार के कई पीढ़ियों के उत्थान और पतन की कहानी है।
हाँ, हराफिश एक तरह से चक्र जैसा।
बिल्कुल, अरेबियन नाइट्स एंड डेज, 1982 में वे क्लासिक अरबी कहानियां अलिफ लैला को एक नए दार्शनिक अंदाज में पेश करते हैं। और अखिनातान, सत्य में रहने वाला, 1985 में वे फिर प्राचीन मिस्र के इतिहास की ओर लौटते हैं।
जी, महफूज का अपना जीवन भी कम नाटकीय नहीं था। ये जानना हैरत में डालता है कि उन्होंने लगभग 40 साल तक एक बहुत ही अनुशासित, लगभग दोहरा जीवन जिया।
40 साल?
हाँ, दिन में वे एक सरकारी मुलाजिम थे, पहले धार्मिक मामलों के मंत्रालय में, फिर संस्कृति मंत्रालय में सेंसरशिप विभाग के निदेशक और बाद में सिनेमा संगठन के सलाहकार। और शामें और रातें लिखने के लिए समर्पित थीं। ये रोजमर्रा की दिनचर्या और उनके अंदर उबलती रचनात्मकता का संगम मतलब कमाल का था।
अविश्वसनीय।
और जैसा हमने बात की, गिबलावी के बच्चे उपन्यास पर हुए विवाद ने उन्हें लगातार खतरों के साए में रखा। दशकों तक उन्हें मौत की धमकियां मिलती रहीं। फिर 1979 में एक और मोड़ आया जब मिस्र ने इसराइल के साथ कैम्प डेविड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
हाँ, वो समझौता।
महफूज उन कुछ बुद्धिजीवियों में से थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इस समझौते का समर्थन किया। इस कारण कई अरब देशों ने उनके कामों पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वो अरब जगत में काफी अकेले पड़ गए थे उस समय।
और फिर 1994 में वो खतरा एक भयानक हकीकत बन गया। एक इस्लामी चरमपंथी युवक ने, जिसने शायद वो विवादास्पद उपन्यास पढ़ा भी नहीं था।
हाँ, यही तो विडंबना है।
उसने 82 साल के महफूज पर उनके घर के पास काहिरा में चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
जी।
वे इस हमले में चमत्कारिक रूप से बच तो गए, लेकिन उनकी गर्दन और दाहिनी पाह की नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि वे अपने दाहिने हाथ से लिख नहीं सकते थे।
ओह।
एक लेखक के लिए
सोचिए, इससे बड़ा आघात क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे अपनी छोटी, अक्सर सपनों जैसी कहानियां बोलकर लिखवाते रहे।
कमाल है
जी। 30 अगस्त 2006 को 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अपने आखिरी दिनों तक वे काहिरा के मशहूर कैफे ऋषि जाते थे, जहां वे दोस्तों से मिलते, युवा लेखकों को सलाह देते, अरबी साहित्य के एक चलते फिरते स्मारक की तरह मौजूद रहते थे।
क्या जीवट था।
बिल्कुल। अच्छा, महफूज का असर उनके जीते जी ही बहुत गहरा और व्यापक हो गया था। उन्होंने अरबी उपन्यासकारों की पूरी पीढ़ी को यथार्थवाद की ओर मोड़ा। उनके प्रभाव को महफूजियन स्कूल तक कहा गया। उन्होंने अरबी उपन्यास को पश्चिम के साहित्य के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, उसे एक गंभीर कला माध्यम के तौर पर स्थापित किया।
हाँ, ये तो है।
फिर 1988 में जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो वो रातों रात एक वैश्विक हस्ती बन गए। उनके कामों का दुनिया भर की दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हुआ। इससे न केवल महफूज को पहचान मिली बल्कि पूरे अरबी साहित्य की ओर दुनिया का ध्यान गया।
सही बात है।
उनके लेखन ने अरब समाज और संस्कृति के बारे में पश्चिम में फैली कई घिसी पिटी धारणाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़ने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने मिस्र के जीवन को उसकी पूरी इंसानी जटिलता के साथ पेश किया, अच्छा बुरा सब कुछ।
और ये जो विषय उन्होंने उठाए, राजनीतिक भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरता का खतरा, सामाजिक पाखंड, पहचान का संकट, परंपरा और आधुनिकता की कश्मकश, क्या ये आज भी उतने ही मायने रखते हैं?
बिल्कुल, शायद आज ये विषय पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, ना सिर्फ मध्य पूर्व में बल्कि पूरी दुनिया में। आप अला अलस्वानी जैसे आज के मशहूर मिस्र के लेखकों को पढ़ें।
हाँ, द याकूबियन बिल्डिंग वाले।
जी वही। तो आप देखेंगे कि वे महफूज की ही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। महफूज का असर आज भी जिंदा है।
और ये भी तो कमाल है कि उनकी कहानियों पर 30 से ज्यादा फिल्में बनी, द बिगिनिंग एंड द एंड, पैलेस वॉक, द लैंड जैसी फिल्में, और काहिरा ट्रिलॉजी जैसे टीवी धारावाहिकों ने तो उन्हें अरब दुनिया के घर घर में पहुंचा दिया।
हाँ, और एक दिलचस्प बात और बताऊं, उनकी कहानी मिदाक गली पर मेक्सिको में एक बहुत सफल फिल्म बनी, एल कालेहॉन दे लॉस मिलाग्रोस, 1995 में आई थी, सलमा हायक थी उसमें।
अच्छा, मेक्सिको में?
जी, और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहा गया। ये साबित करता है कि महफूज की कहानियों की अपील किसी एक शहर या संस्कृति तक सीमित नहीं थी, वो इंसानी जज्बात की सार्वभौमिक कहानियां थीं। वे सचमुच संस्कृतियों के आर पार देखने वाले लेखक थे।
वाकई। अच्छा, महफूज के कुछ कहे हुए वाक्य भी उनके विचारों की गहराई दिखाते हैं। जैसे उन्होंने खोज उपन्यास में कहीं लिखा है, असली बीमारी जीवन का डर है, मौत का नहीं।
हाँ, ये बहुत गहरा वाक्य है। ये शायद हमें जिंदगी की अनिश्चितताओं और मुश्किलों का हिम्मत से सामना करने की बात कह रहा है। उनके अस्तित्ववादी रुझान का संकेत है ये।
और एक और काहिरा ट्रिलॉजी से आता है, घर वो नहीं है जहां आप पैदा हुए थे, घर वो है जहां आपके भागने के सभी प्रयास समाप्त हो जाते हैं।
वाह, ये पहचान जड़ों और अपनेपन की तलाश के बीच के जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है, कहाँ है असली घर।
सही बात। और ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आया, आप किसी आदमी के जवाबों से बता सकते हैं कि वो चतुर है या नहीं, आप किसी आदमी के सवालों से बता सकते हैं कि वो बुद्धिमान है या नहीं।
क्या खूब कहा है। मतलब ज्ञान सिर्फ जवाबों में नहीं, सही सवाल पूछने की क्षमता में भी है। ये उनके दार्शनिक मिजाज को दिखाता है।
हाँ।
और जब उन्हें नोबेल मिला तो उसके बाद 1988 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, लेखक का वतन उसकी भाषा है।
लेखक का वतन उसकी भाषा है।
जी,
ये बयान राजनीतिक सरहदों से ऊपर उठकर सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान की अहमियत बताता है, खासकर उस दौर में जब उनके राजनीतिक विचारों के कारण कुछ अरब देशों में उनकी आलोचना हो रही थी।
और एक विचार जो बार बार उनके लेखन में आता है और शायद काहिरा ट्रिलॉजी में भी है, डर मौत को नहीं रोकता, ये जीवन को रोकता है। हाँ, फियर डजंट प्रिवेंट डेथ, इट प्रिवेंट्स लाइफ।
जी,
सीधी लेकिन बहुत शक्तिशाली बात है। डर हमें मरने से नहीं बचाता, पर वो हमें खुलकर जीने से जरूर रोक देता है।
जी,
ये उनके कई किरदारों के अंदरूनी संघर्ष का निचोड़ भी है।
बिल्कुल। महफूज के बारे में कुछ और बातें हैं जो मुझे बहुत अनोखी लगती हैं। एक तो यही दोहरा जीवन, लगभग 40 साल तक एक बेहद अनुशासित, शायद कुछ लोगों को नीरस लगने वाला सरकारी अफसर का जीवन, और उसी के साथ इतने विस्फोटक, इतने गहरे साहित्य का सृजन, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा?
हाँ, ये सोचने वाली बात है, अनुशासन और जुनून का मेल।
दूसरा, वो बचपन का अनुभव, 7 साल की उम्र में 1919 की क्रांति और हिंसा को देखना, और उस एक घटना का उनके पूरे लेखन पर इतना गहरा और स्थायी असर पड़ना।
जी, बचपन की छाप।
तीसरा, वो दुखद विडंबना कि 1994 में जिस युवक ने उन पर हमला किया, उसने शायद वो किताब पढ़ी तक नहीं थी जिसके नाम पर उसे भड़काया गया था।
हाँ, ये कट्टरता और अज्ञानता का भयानक गठजोड़ दिखाता है।
और चौथा, हमले में हाथ बेकार हो जाने के बाद भी उनका लिखना न छोड़ना, बोलकर कहानियां लिखवाना जारी रखना, ये उनके फौलादी इरादे और लेखन के प्रति उनके जुनून को दिखाता है।
अगर हम महफूज की विरासत को एक वाक्य में समेटने की कोशिश करें तो शायद ये कहा जा सकता है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ मिस्र के बदलते समाज का आईना दिखाना ही नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं और भारी भरकम बदलावों के बीच भी साधारण इंसानी जिंदगी, उसके प्यार, नफरत, महत्वाकांक्षा, विश्वास, शक, सपने कैसे जारी रहती हैं, कैसे अपना रास्ता और अपना अर्थ खोजती है। उन्होंने हमें सिखाया कि महान कहानियां अक्सर बहुत साधारण दिखने वाले जीवन में छुपी होती हैं। महफूज ने हमें दिखाया कि हर गली, हर घर, हर इंसान के दिल में एक पूरी दुनिया धड़कती है, और शायद यही सोचने की बात है कि कैसे किसी एक जगह, एक संस्कृति की गहराई में उतरकर कोई लेखक पूरी इंसानियत की कहानी कह सकता है।
बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।